क्योंकि आज थोड़ा हम अलग ढंग से कराएंगे आपको। क्लासेस तो बहुत सुने हैं, आप ऑनलाइन भी जाएंगे तो भी बहुत सुनने को मिलेगा, लेकिन जब भी हम प्रैक्टिकल में खुद की सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कार को सही रूप से नहीं यूज करेंगे, तो वो अंदर में जो पोटेंशियल भरी हुई है, जो हमने बाबा से प्राप्ति ली है, जो वरदान मिले हैं, जो ज्ञान मिला है, वो फलीभूत नहीं होता है। हम भल जितना आपको क्लास कराए, लेकिन आपके जो अंदर है वो चीज आपके पुरुषार्थ से ही फलीभूत होगा। तो आज मुझे आपको थोड़ा सा एक विषय पर थोड़ा कहे एक्टिविटी या थोड़ा कुछ अपना पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देनी है। तो मैं पहले तो राधा बहन को बोलूंगी कि आप सभी के हाथ में अभी एक वरदान आएगा, बहुत ही सुंदर वरदान है, और आप ऐसे समझो कि बाबा ने खुद ये वरदान आपको दिया है। ठीक है, तो प्यार से लेंगे वरदान को। क्या है, कई बारी हमारे जीवन में हम समझते हैं पुरुषार्थ करना है पुरुषार्थ, और वही लक्ष्य लेकर के हम भारी हो जाते हैं। लेकिन ये भी एक पुरुषार्थ होता है कि जो भी हमको प्राप्तियां मिली है बाबा से, उसको रिवाइज करना, उसको फीलिंग में लेके आना, ये भी एक पुरुषार्थ है। क्योंकि पुरुषार्थ का एम क्या है? मन बुद्धि संस्कार को श्रेष्ठ बनाना, राइट? आपका पुरुषार्थ आपके मन बुद्धि संस्कार को श्रेष्ठ नहीं बना रहा है तो कुछ विधि में गड़बड़ है। आपका पुरुषार्थ आपको प्रेशर दिला रहा है तो समझो कुछ ठीक नहीं है। पुरुषार्थ से आजादी, पुरुषार्थ से खुशी, पुरुषार्थ से हल्कापन की महसूसता। तो आज जो आपके हाथ में अभी वरदान आया है, मैं आपको पहला प्रश्न पूछती हूँ। एक थोड़ी सी एक्टिविटी है, तो जो भी आपको अभी डायरेक्शन मिलेगा उस अनुसार आप जरूर फॉलो करेंगे। तो पहला ये प्रश्न है इस वरदान के ऊपर कि ये जो वरदान आपको हाथ में मिला है, इस वरदान का आपके जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव क्या है? मतलब प्रैक्टिकल अनुभव क्या है इस वरदान का आपके जीवन में? चाहे ये वरदान को यूज किया हुआ होगा, चाहे आपने देखा होगा संपर्क संबंध में, व्यवहार में, या किसी से देखा होगा, तो इस वरदान का आपका जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव क्या है? तो आपको एक मिनट देती हूँ, इसके ऊपर सोच चलाओ, आपके जीवन की लाइफ को रिवाइंड करो और देखो कौन सी ऐसी सीन है मेरी जीवन में जिनमें ये वरदान का प्रैक्टिकल अनुभव हुआ था। तो मैं दोबारा प्रश्न पढ़ती हूँ जो आए हैं अभी, इस वरदान का आपके जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव क्या है? एक सीन आपके सामने आएगा, एक स्टोरी याद आएगी, कुछ प्रैक्टिकल व्यवहार में कुछ याद आएगा। सभी को जवाब आया मन में? अभी आप जो बाजू वाला है उसको आप बताएंगे एक मिनट में कि इसका प्रैक्टिकल अनुभव क्या है। जो आपके पास बाजू वाला बैठा है उसके पास आप बैठो या घुमाओ और आप शेयर करो कि प्रैक्टिकल इस अनुभव का क्या है आपका, और सिर्फ एक दो 20 सेकंड का शेयरिंग, बहुत नहीं, लेकिन इसका महत्व है इस एक्टिविटी में। तो ये वरदान आपके जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव क्या है? अच्छा, स्टॉप, जहां पे भी हो अभी 30 सेकंड के लिए इस वरदान का स्वरूप बन जाओ साइलेंस में. अभी आपका जो पार्टनर है उसके साथ वरदान एक्सचेंज कर लो, तो आपके हाथ में एक नया वरदान आना चाहिए. सभी के हाथ में नया वरदान आया? अच्छा, सभी के हाथ में नया वरदान आया है ना. अच्छा, अभी नया वरदान अच्छी तरह से पढ़ो और मैं दूसरा प्रश्न पूछती हूं उस वरदान के ऊपर. ये जो वरदान आपके हाथ में है आपके लिए अभी के समय अनुसार आपके जीवन में इस वरदान का इंपॉर्टेंस क्या है? अभी के समय अनुसार आपके जीवन में इस वरदान का महत्व या इंपॉर्टेंस क्या है? ये आपके हाथ में तो बाय चांस से नहीं आया है, कुछ राज है इसके पीछे, मीनिंग है जो आपकी जीवन के लिए अभी के समय के लिए जरूरी है ये वरदान. अच्छा, अभी आपको थोड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा. मुझे पता है सीट बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन आपको थोड़ा पुरुषार्थ माना कुछ गाड़ी को हिलाना पड़ता है. अभी आप दूसरा पार्टनर को ढूंढो और उसके साथ शेयर करो कि इस वरदान का महत्व क्या है. माताजी, आपके पास भाई बैठे हैं, वहीं बैठो. नहीं, स्वप्न नहीं करना है, पहले बताना है कि आपके लिए इस वरदान का महत्व क्या है. अच्छा, स्टॉप, अभी 30 सेकंड के लिए इस वरदान का स्वरूप बन जाओ, बिल्कुल साइलेंस में इस वरदान का स्वरूप बन जाओ. अभी लास्ट, जो आपका नया पार्टनर है उसके साथ एक्सचेंज करो वरदान, तो आपके हाथ में एक नया वरदान आना चाहिए. आपका वरदान उसको दे दो. आप आगे आई, इस भाई का वरदान आपने एक्सचेंज कर लिया, हो गया ना. तो सभी के हाथ में एक नया वरदान होना चाहिए. नया वरदान है? नहीं है? हाँ, दूसरा होना चाहिए, ठीक है ना. आ गया सभी का. अच्छा, अभी लास्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनो. आपके लिए, सॉरी, यदि आप, चलो इस वरदान को, यदि आप एक चित्र में इस वरदान को बना सकते हो तो क्या होगा? मैं आपको चित्र को ड्रॉ करने के लिए नहीं कहती हूं, लेकिन मन में इस वरदान के प्रति कौन सा इमेज आता है, कौन सा चित्र उत्पन्न होता है मन में. समझो, मैं एग्जांपल देती हूं. समझो मैं प्यूरिटी के बारे में सोचती हूं, इसकी फीलिंग में जाती हूं, और उस फीलिंग से एक चित्र सामने आता है कि प्यूरिटी की फीलिंग का चित्र क्या है मेरे लिए. मेरे लिए एक समुद्र जैसे, एक बिल्कुल शांत स्थित समुद्र होता है ना, वो प्यूरिटी है मेरे लिए. तो जब ये वरदान आप पढ़ते हो तो आपको क्या फीलिंग आती है, और उस फीलिंग से मन में कौन सा इमेज या चित्र बनता है? अच्छा, आया सभी के मन में कुछ? अच्छा, जो भी है बाजू में इसके साथ शेयर करो, कौन सा चित्र आया मन में. पहले तो वरदान बताओ और फिर जो चित्र मन में आया उठाया वो बताओ. आप तीन का ग्रुप बना दो यहाँ पे, सिस्टर भाई के साथ तीन का ग्रुप बना दो. नहीं सुनो, आप दोनों, आप इनके साथ शेयर करो ना, आपके पीछे वाले भाई के साथ, काका के साथ भी। अच्छा हो गया सभी का, ठीक है, सभी ने शेयर कर दिया। अच्छा 30 सेकंड में इसका रूप स्वरूप बन जाओ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा माना क्या? कौन सा नया, क्या हुआ मन में आपको, क्या फीलिंग आई है अंदर से? खुशी और हल्कापन और शांति। अभी यही फीलिंग में स्थित होके ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। देखो 15 मिनट में जो आप अपना काम करते हो, अपना नशा घोटते हो, उसमें से आपको खुशी, हल्कापन, शांति, लाइटनेस कितनी महसूसता हुई, जो एक घंटे का क्लास के बाद में भी इतना नहीं होता है, 15 मिनट में हुआ। इसके पीछे एक साइंस है जो बाबा ने हमको बताई है, मंथन करने का। कई लोग हैं हमारे ब्राह्मण परिवार में कि मंथन करने की विधि का पता नहीं है, और जब तक ब्राह्मणों में ये संस्कार पैदा नहीं होगा तो आप अपनी खुशी, शांति, शक्ति को स्थायी भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये आपका काम है। इस एक्टिविटी में मैं थोड़ा इसका ब्रेकडाउन बताती हूं। मैंने आपको 3 प्रश्न पूछे, ठीक है। एक तो वरदान दिया हाथ में, कुछ भी हो सकता है हाथ में, वरदान हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है। पहला प्रश्न मैंने आपको पूछा, क्या था पहला प्रश्न? अनुभव क्या था आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, इस वरदान का अनुभव क्या है? माना मैंने आपका संस्कार और चित को इमर्ज किया, वो ही संस्कार को इमर्ज कियो, इमर्ज करो जिसमें ये प्रैक्टिकल अनुभव है। ये पहला संस्कार के तरफ प्रश्न पूछा मैंने, और वो भी पॉजिटिव रूप में पूछा, क्योंकि आपके हाथ में वरदान है, गिलानी तो नहीं है ना आपके हाथ में। कोई पेपर पे गिलानी लिखता और मैं आपको देती आपके हाथ में, और फिर मैं आपको पूछती ये आपके जीवन में इसका प्रैक्टिकल अनुभव क्या है? तो बिल्कुल आपकी एनर्जी यहां से यहां तक पहुंचती। लेकिन यहां पे हमने संकल्प किस आधार पे दौड़ाया? वरदान के ऊपर दौड़ाया संकल्प को, तो वो श्रेष्ठ संकल्प मेमोरी इमर्ज हुई, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या था? इंपॉर्टेंस का, महत्व का, सिग्निफिकेंस का। ये संस्कार किस कर्मेंद्रिय के लिए है, किस सूक्ष्म कर्मेंद्रिय के लिए है? ये क्वेश्चन बुद्धि के लिए है। बुद्धि का काम क्या है? समझना। कुछ चीज बुद्धि से ग्रहण होती है, ग्रहण होती है तब होती है जब ही हम किसका महत्व समझते हैं अपने लिए, कि ये मेरे लिए फायदे वाली चीज क्यों है, तभी मैं अपनाऊंगी। जब तक बुद्धि कन्विंस नहीं हो गई है तो वो धारण भी नहीं करेंगी। तो जो आपके हाथ में नया वरदान आया था उसके प्रति मैंने ये प्रश्न पूछा कि आपके जीवन में इसका महत्व क्या है अभी के समय अनुसार। तो फिर सोचते सोचते वो वरदान को भी आपने ग्रहण कर लिया, हाँ ये जरूरी है मेरे लिए, क्यों? सूक्ष्म में बुद्धि में बैठ गया। राइट। और लास्ट प्रश्न क्या था? एक चित्र बनाना। तो ये क्वेश्चन प्रश्न कौन सी कर्मेंद्रिय के लिए था? चित्र बुद्धि नहीं बनाती, क्या कौन बनाती? इमेज कहाँ आता है? मन में बनता है ना इमेज। इमेज कहाँ बनता है? आपके मन में। मन की ये फैकल्टी है फीलिंग्स की और इमेज बनाने की। और जो आप मन के स्क्रीन पे लाएंगे, पूरी आपकी शरीर की कर्मेंद्रिय, स्थूल कर्मेंद्रिय उस अनुसार फॉलो करेंगे। इसलिए कहते हैं ना, विश्व में भी कहते हैं, पावरफुल माइंड कैन क्रिएट अ पावरफुल वर्ल्ड। इमेज माइंड पे बहुत महत्व देते हैं, मन की भावनाओं के ऊपर और मन में जो इमेज बनता है खुद के प्रति। तो आज आपने मैंने आपको वरदान दिया, उस वरदान का स्वरूप बनाना था आपको, उस वरदान का चित्र बनाना था। तो जब भी आप चित्र मन में बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली उस चित्र के साथ एक अनुभूति होती है सूक्ष्म में। वो अनुभूति इस गाड़ी को चलाती है। दिस इज हाउ द माइंड वर्क, इट्स माइंड बॉडी कनेक्शन। तो ऐसे करके जब भी हम ऐसे संस्कार मन बुद्धि को होमवर्क देते हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने का, फोकस में, तो ऑटोमेटिकली हल्कापन सेकंड में आता है। देखो मन की बात जब चलते, मैं आपको बताती हूं, सभी ने आम तो खाया है ना, खूब आम खाए हैं ना, आम की सीजन पास हुई। अभी मैं आपको बोलूंगी, आप अपने मन में एक आम इमर्ज करो, इसको काटो और खाओ। अभी क्या अनुभूति हो रही है, मुख में पानी आता है ना, इतना गहरा कनेक्शन है मन और स्थूल कर्मेंद्रिय। अभी सारा दिन आप ये जो तीन है चीजें हैं, हमारे संस्कार, चित, हमारी बुद्धि, हमारे मन, कहां कहां भटकता है, कौन से किचड़े में फंसता है। और जो भी किचड़े में फंसेगा उसका ही अनुभव आपको होगा, उससे ही आपको बेचैनी महसूस होगी। इसलिए अभी के समय अनुसार प्राप्ति बहुत की है। बाबा ने हमको होमवर्क भी दिया है, बच्चे लिस्ट बनाओ, जो भी प्राप्तियां ली है बाबा से, जो भी वरदान मिला है उसका लिस्ट बनाओ, उसको रिवाइज करो। रिवाइज कैसे करें? ये तीन प्रश्न के आधार से रिवाइज करो, क्योंकि वो प्राप्ति, वो वरदान को जागृत रूप में रखना है हमारे जीवन में। ऐसे नहीं कि बस जिस किसी को पैसे दिए, पैसे को बस कबर्ड में डाल दिया, लॉक कर दिया और बस खुश हो गए, मुझे वरदान मिला, भगवान से वरदान मिला। हाँ, वरदान तो मिला है, इसको जागृत कितना रखा है इसके आधार से जीवन बनेगी। और वो जागृति आती है जब भी हम मन इसके ऊपर दौड़ाते हैं, बुद्धि उसके ऊपर दौड़ाते हैं, हमारा चित्त, हमारे संस्कार इमर्ज करते हैं इसके प्रति। ये बेसिक है और ये खुद के लिए बहुत जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, बस हमने दुख लिया, क्या होता है सारा ये ड्रामा, एक स्कूल है ना, स्कूल में कई बातें होती है, टेस्ट होते हैं, संबंध में कुछ होता है, चलो किसी ने मेरे प्रति कोई व्यवहार किया, मैंने दुख लिया, मुझे रिजेक्शन फील हुआ, तो वो सीन मैंने मन में रख दिया, ठीक है, वो सीन से मैंने मन में रख दिया और उसके साथ जो अनुभूति हुई है वो भी मेरे मन में दौड़ रहा है, वो भी एनर्जी एक्सपीरियंस मेरे मन में दौड़ रहा है। फिर मैं जितनी बारी वो सीन को रिवाइज करूंगी या बोलूंगी, चलो मुझे रिजेक्ट किया, मुझे वहां भेज दिया, किसी ने मुझे पूछा भी नहीं, वो भी क्या, जितना मैं वो वर्णन करूंगी उतना वो मेरे मन से चित्त में भरेगा। समझ में आई? अभी इस बात की मैं रिविजन करूंगी, आप सोचो मेरी मन की हालत कैसे होंगी और फिर कौन से संस्कार इमर्ज होंगे। मैं भी खुद निमित्त बनूंगी किसी और को रिजेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने रिजेक्शन का एक्सपीरियंस ग्रहण किया। और मैंने जब तक रिजेक्शन का एक्सपीरियंस ग्रहण किया तो वो ही एक्सपीरियंस देने की निमित्त बनूंगी। ये कायदा है कुदरत का। खुद को छुड़ाना है तो हमारा सारा काम सूक्ष्म का काम है, इसको भूलना है। इतनी अच्छी अच्छी बातें, अच्छा अच्छा अनुभव बाबा करा रहा है और हम उसको साइड में धकेल के, ये जो इत्तफाक से एक दो बारी होता है हमारे साथ वो ही मन में सारा टाइम रखते हैं। फिर हम सोचते हैं चलो हम मधुबन में बैठे हैं, यहां बैठ के तपस्या करेंगे। कोई तपस्या नहीं होता है जब तक यहां से नहीं निकाला है उस जर्म को, उस कीड़े को, तब तक कोई यहां योग में बैठने का कोई फायदा ही नहीं है। समझ में आई बात? काम सब कुछ यहां का है, इसका है। इसको लाइट रखना है, मन को अमन करना है, बुद्धि को निर्संकल्प बनाना है, चित्त को साफ रखना है। और फिर आप देखेंगे ऑटोमेटिक बिना मेहनत से जो भी बाबा से प्राप्ति ली है वो काम करेगा और वो वाइब्रेशंस और वो प्राप्ति औरों को पहुंचेगा। अभी क्या होता है, हम जैसे सेल्फिश शब्द नहीं यूज करेंगे, लेकिन जो बैंक में ताला हुआ बंद, बैंक का ताला जब बंद होता है ना, बैंक में खजाना बहुत है लेकिन ताला बंद किया हुआ होता है, उससे हम खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आपस में भी हम एक दोनों में जो बाबा ने हम में प्राप्तियां भरी है, जो खजाना भरे, उसकी प्राप्ति हमको महसूस नहीं हो रही। एवरी वन ऑफ यू, जो भी हर एक आत्मा इस बैठी है, आप अनुभव की खान हो, बाप की प्राप्तियां का एक खजाना हो, एक बैंक हो। बैंक का काम क्या है? लेन देन। लेकिन वो वाइब्रेशंस किसी को मिल क्यों नहीं रही है? आप उस प्राप्तियों की भासना क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि कुछ न कुछ बुद्धि टेढ़ा काम उल्टा चल रही है, मन में कुछ पुरानी बातें रही है और पुराने स्वभाव संस्कार चला रहे हैं। तो हमारा काम पुरुषार्थी होकर के बस यही काम है। बाबा ने हमको बता दिया कलयुगी दुनिया है, इस कलयुगी सृष्टि का बीज है ही कर्म बंधन, तो चिंता नहीं करो ना। व्याधि तो होंगी, शरीर की व्याधि होंगी, संबंध व्यवहार की व्याधि होंगी, धन की व्याधि होंगी, दौलत व्याधि होंगी, कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि कर्म बंधन चुप तो करना है। बस साक्षी होकर के, हर्षित मुख होकर के अपनी अवस्था को हल्का, शांत, साक्षी बनाना है। और जब ये क्लियर रहता है ना, आपे ही गाड़ी ऑटोमेटिक चलती है। जो नेचुरल रियल है, राइट टाइम पे राइट चीज होंगी, राइट टाइम पे राइट संकल्प होगा, लेकिन अंदर संस्कार चित्त बुद्धि में मन में कुछ भी पकड़ा हुआ होता पुराना, तो जैसे आप ड्रामा के पट्टे पे भी नहीं चल पाएंगे और बाबा की आश भी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। आप जैसे एक इंडिपेंडेंट सेल्फिश ताला किया हुआ बैंक हो और आप ही अपने व्यर्थ संकल्प में घूम रहे हो सारा टाइम, तो फिर चलो आप क्लास भी कराओ उस स्थिति में, उसका फायदा किसको उठेंगे? नहीं, किसको प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो अभी के समय अनुसार मैं कहती हूं दो बातें हैं मेरे हिसाब से, कि हमको अंदर से खुद का ऐसा संभाल करना है जो हमारे पार्ट में है, हमारा एक बहुत श्रेष्ठ पार्ट है, भगवान के साथ एक जुड़ी हुई पार्ट है हमारी, एक बहुत श्रेष्ठ कार्य है, हमको अभी तक करना है, बाबा कराएगा। लेकिन वो जो पार्ट की प्रेरणाएं हैं, वो हमारे अंदर भरी हुई है, उसको कैच करना है। और जब हम बहुत समय से उस प्रेरणाओं से, हम प्रेरणाओं को कैच करेंगे और फिर बाबा मम्मा जो बाप की दी हुई प्रेरणाओं से मैच करेंगे, फिर चलेंगे, तो देखो आपकी जीवन डायमंड जैसे बन जाएंगी, ऑटोमेटिक, सहज। हम जब कोई भी दुख की बात या पुरानी बात मन दिल बुद्धि चित्त में रखते हैं, हम खुद की प्रेरणा, पाठ की प्रेरणाओं को सप्रेस करते हैं, दबा देते हैं, और वो ही पुरानी बात हमको कंफ्यूजन में ले आती है। उस कंफ्यूजन में कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करना है, क्या बनना है। चलो बाबा की बातें सुनते हैं, वो ग्रहण भी नहीं होती है उस समय। प्रेरणा को कैच करने के लिए सूक्ष्मता चाहिए, यहां पे हल्कापन, शांति चाहिए, ताकि डीप जो पार्ट में जो नूंदा हुआ है वो हम कैच कर सकते हैं। ये है नेचुरल, समझ में आई बात। फिर हम बाहर से भगत नहीं बनेंगे, किसी के भगत नहीं बनेंगे, चलो इसके पीछे दौड़ो क्योंकि ये अच्छे क्लास कराते हैं, हाँ चलो हम सुनेंगे तो हमको भी प्राप्ति मिलेंगी, ऐसे नहीं होगा। हमको फॉलोअर से इंडिपेंडेंट मास्टर बनना है, स्वतंत्र बनना है। जब तक आपने ये यूज नहीं किया है सही रूप से, तो आप स्वतंत्र बन भी नहीं सकेंगे। तो इसीलिए पहला है कि अभी के समय अनुसार बहुत शांति की शक्ति का प्रयोग करके, एक तरफ तो मंथन, जो भी प्राप्तियां दी है बाबा ने उसका मंथन करके खुद की मन बुद्धि चित्त को शांत, साफ, हल्का बना दो, और बातों में जाओ ही नहीं। रियली ये दादी जी हमको कायम कहती थी, डोंट केयर। देखो कई बातें होती है और हम क्या करते हैं, हम अपने आप को होशियार समझ करके, मियां मिठू समझ करके सोचते, इसके ऊपर सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे के लिए नहीं होना चाहिए। बेसमझ का काम है ये। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक ग्रीस की एक माता थी, वो वहां की एसोसिएशन, ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी। तो ग्रीस तो हमारे इंडियन जैसे ही होते हैं, बहुत ज्यादा सोचने वाले, बोलने वाले, अपना ही मत चलाने वाले। तो मैंने इनको पूछा कि तुम कैसे रह सकती हो इनके बीच में, मीन्स क्या है आपकी सीक्रेट, क्योंकि उसका नाम है हरा, और हरा माना वो हर्षित मुख वाली। तो मैंने बोला हर्षित मुखता का आपका क्या राज है, सीक्रेट क्या है आपकी। कहती है देखो ग्रीस माना ड्रामा, और वहां पे एक सिटी है नॉर्थ में जिसका नाम है ड्रामा। छोटे बात को ड्रामा बना देते हैं, बड़ी बात बना देते, कहानी बना देते, और कहानी रूप में सभी को सारा दिन ये कहानियों में ही बिताते हैं टाइम। तो कहते है, देखो कहानियां तो बहुत होती है, ऐसी स्थितियां तो बहुत होती है, लेकिन मेरे सामने इतना सारा कुछ आता है और मेरे पास टाइम ही नहीं है इसके ऊपर सोच चलाओ, इसको समझो, वो आता है और जाता है, तो मैं सोच नहीं चलाती हूं, बस आया गया, मैं क्यों इसके पीछे फालतू टाइम गवाऊं सोचने के लिए, समझने के लिए, वो तो चला गया, टाइम लेके चला गया। तो ऐसे मैं अपने आप को हर्षित रखती हूं, जो बात बीती है उसको समझने की क्या दरकार है, कॉमन सेंस की बात है। तो हम एक उल्टा संसार बना देते हैं, जो बीती हुई बात है उसके ऊपर सोच चलाते हैं, बैठे संकल्प की सृष्टि बना देते, और वो ही सृष्टि में हम गोते खाते हैं, बस दर्द दुख। तो चक्कर जब फिरता है आगे फिरता है, पीछे नहीं, उल्टा नहीं फिरता है। तो वैसे ही मन बुद्धि को सिचुएशन के हिसाब से चलाना है तो आगे चलाना है। चलो कुछ हो गया, अभी आके इसका सलूशन क्या है, अभी मुझे क्या करना है, आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, क्यों क्या हमें फंसे रहेंगे। तो ओम शांति। पूरा आपका यहाँ का सिस्टम है जो बिल्कुल सही सिस्टम है, अंदर की राजधानी है, मैनेजमेंट सिस्टम है आपकी, पूरी खत्म हो जाएगी करप्शन, पूरी मशीनरी स्टॉप हो जाएगी। तो हमको स्वतंत्र बनना है यहां से, पूरा अंदर की मैनेजमेंट सिस्टम को पॉजिटिव ट्रैक पे लेके जाना है। तो ये एक आपको नियम बनाना ही पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, उल्टे संकल्पों की सृष्टि बनानी नहीं है, कुछ भी हो जाए। समझ में आई बात? क्योंकि संकल्पों का भी हिसाब किताब है ना, अभी का तो हिसाब किताब चुकतू होने का टाइम में ही हम गुजर रहे हैं। आप थोड़ा सा उल्टा संकल्प करेंगे ना, वायरस आपको पकड़ लेंगे, ऐसा ही है। क्योंकि वायरस को चाहिए एक दरवाजा चाहिए आपके कर्म बंधन चुकतू करने का। उल्टे संकल्प, पुराने संकल्प, खराब संकल्प, लो फ्रीक्वेंसी के संकल्प होते हैं, लो एनर्जी के संकल्प। वायरस भी लो एनर्जी की होती है। तो जैसा संकल्प वैसा आपको साधन मिलेगा कर्म बंधन चुकतू करने के लिए। तो अभी के समय अनुसार मुझे और ही अटेंशन देना है ताकि मेरी संकल्प की क्वालिटी कम ना हो जाए। ये बहुत जरूरी है, ये हमारे बचाव के लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है। ठीक है, देखो 12:30 बज गया ऑलमोस्ट। अच्छा लगा आपको एक्टिविटी? अभी आप इसको, आप जाकर के यहां से चाहे दोपहर में चाहे शाम को आपको टाइम मिले, आप एक लिस्ट बनाओ, जो भी बाबा के साथ अनुभव हुआ है वो लिखो, जो आपको प्राप्ति मिली है और जो आपको वरदान मिला है उसकी लिस्ट बनाओ, और एक एक चीज पे मन बुद्धि संस्कार को दौड़ाओ। आप देखेंगे आधे घंटे में आपकी स्थिति यहां से यहां तक पहुंचेगी, बिल्कुल इतना इजी हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने एक बारी मुरली चलाई थी, 1988 जनवरी 1988 की मुरली थी, पूरी मंथन करने की विधि क्या है उसके ऊपर बाबा ने मुरली चलाई थी। और बाबा ने इसमें 4 प्रश्न पूछे थे कि बच्चे मुरली के समय अनुसार, मुरली का जब समय होता है उसमें आपका अनुभव क्या रहता है, आपको बाप से क्या फीलिंग आती है, वो चेक करो पहले। दूसरा कि मुरली सुनने के समय कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो दिल और मन को टच होते हैं, आपके दिल मन को टच होते हैं। क्योंकि बाबा जब मुरली चलाता है तो लहर सागर के माफे कितने सारे लहर होते हैं, लेकिन कौन सा लहर, कौन से पॉइंट्स मेरे दिल मन को टच किया उसको नोट करो। फिर तीसरा है कि वो पॉइंट्स जो मेरे दिल मन को टच हुआ उसके पीछे बाबा का कहने का मतलब क्या था, राज क्या था, बाबा ने क्यों वो बात उठाई मुरली में, और वो पॉइंट्स मेरे जीवन में इनके महत्व क्या है। तीसरी बात, महत्व का राज क्या है इस पॉइंट के पीछे, मुझे टच तो हुई लेकिन क्यों। और चौथी बात कि जिस बात मेरे दिल मन को टच हुई है, जिसका रहस्य भी मैं समझ गई हूं, उसको मैं किस विधि से अमल में लाऊंगी, प्रैक्टिकल में इसको कैसे बनाऊंगी, ये चौथा है। और फिर कब करूंगी उसका टाइम टेबल में टाइम फिक्स करो। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो मैं ये करूंगी, लेकिन हम टाइम डेट नहीं फिक्स करते, तो होता ही नहीं है। एक दो दिन हो जाता है फिर भूल जाते हैं। जब तक आपने वो प्रैक्टिकल बात टाइम टेबल में नहीं लगाए, तब तक समझ लो होंगी ही नहीं। तो ये चार बातें हैं, एक है अनुभव, मुरली सुनने के समय क्या अनुभव है, दूसरा है कौन सी बातें टच हुई मन दिल मन को, तीसरी बात है रहस्य की बात, राज की बात, इसके पीछे बाबा का क्या राज था, मेरे जीवन में इसका महत्व क्या है, और चौथा है प्रैक्टिकल, अमल में लाना और कब उसका टाइम फिक्स करना है। आप हर एक मुरली, हर रोज की मुरली के बाद 10 मिनट निकालेंगे और ये चार स्टेजेस का प्रयोग करेंगे तो आपकी मंथन शक्ति आपे ही बढ़ेंगी। और आप क्या करेंगे, आपकी मन बुद्धि संस्कार जो अंदर की अवस्था है उसको आप श्रेष्ठ बना रहे हो। जैसे इस एक्टिविटी के बाद आपको हल्कापन महसूस हुआ, आपको शांति महसूस हुई, खुशी महसूस हुई, वो ही आपको हर रोज की मुरली से आपको नशा मिलेगा। अब जब आपकी एनर्जी उस लेवल तक रहेंगी तो समझो कुछ भी हो जाएगा दिन में वो आपको असर नहीं करेगा, आप फीलिंग में नहीं आएंगे जल्दी, अपसेट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आपने सुबह के समय आपने खुद का नशा घोटा। ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। और बाबा की एनर्जी तो बहुत प्योर है, ठीक है, वो प्योर एनर्जी तब काम करती है जब हम हमारी अवस्था को हल्का बना देते हैं। अंदर में कुछ भी भारीपन होता है ना, तो बाबा तो बहुत लाइट है, वो भारी चीज को पकड़ नहीं सकता है। बाबा बहुत ही लाइट है, तो बाबा की रक्षा चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, मदद चाहिए, खुद को हल्का रखना ही है। कैसे भी नियम आप अपने आप पे बांध दो, खिचड़े वाली बात में जाना ही नहीं है, पास्ट की बातों में जाना ही नहीं है, फिर आप देखेंगे इतना मदद, जैसे फुहारा, इतनी साकाश मदद, शक्ति, बल, बहुत कुछ मिलेगा बाबा से, आप ही काम करेगा, नेचुरल वाइब्रेशन आप ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग भट्टी में इसका अंडरलाइन जरूर करो, क्योंकि मुझे पता है कि भारत में सुनने का बहुत रवाज है, कहानी सुनो, कथा सुनो, महाभारत सुनो, रामायण सुनो, कंडरस बनो और वैसे ही वैसे बन जाओ। अभी स्वतंत्र बनना है, माना ये चलाना है, पूरी अंदर की राजधानी को साफ करके हल्का करके चलाना है। तो चलो अभी आधा घंटा योग करें, और इस आधे घंटे में मैं आपको एक कमेंट्री के रूप में जो हमने सीखा है, आपकी अंदर की आत्मिक शक्ति कैसे आपको एकाग्र बना देती है। हम जब 8 साल की उम्र में थे तभी हमारे फादर ने हमको यहाँ पे इंद्रप्रस्थ लेके आए थे, तभी मनोहर दादी थी, चंद्रमणि दादी जी थे, तो वहां बिठा दिया था हमको। और उस समय हमारे पिताजी ने दादियों को बोला कि इनको योग की विधि सिखाओ। हमारी उम्र 8 साल की थी, दूसरा भाई 7 साल के था, एक बहन 5 साल की थी, दूसरी 9 साल की थी। तो मैंने सोचा उस समय ये योग हमको कैसे सिखाएंगे, तो बहुत ही अच्छी विधि बताई। एक तो चंद्रमणि दादी ने बताया था कि देखो योगी बनना है तो मन की संभाल चाहिए, ठीक है। तो आप लोग खिलौना खेलते, खिलौने के साथ खेलते हो, डॉल वगैरह होता है ना, छोटे बच्चे ऐसे खेलते हो तो आप क्या करते हो, डॉल को निकालते हो, उसको सजाते हो, ठीक है, उसके बाल बनाते हो, फिर जब खेलना खत्म होता है तो इसको ठीक रीति से वापस रखते हो ना। तो वैसे ही मन की संभाल होनी चाहिए आपको योगी जीवन प्राप्त करना है तो। और फिर मनोहर दादी ने हमको एक प्रैक्टिस बताई कि आप एक घंटा एकांत में बैठो और इस एक घंटे में चार प्रश्न के ऊपर प्रयोग करो। पहला है मैं कौन हूं, दूसरा है मैं किसकी हूं, तीसरा है मैं कहां से आई हूं, और चौथा है मुझे क्या करना है। और ये चार प्रश्न का डायलॉग शुरू करो और तीन बारी, तीन साइकिल करनी है इस डायलॉग का। और इस तीन साइकिल में मन भटकना नहीं चाहिए। जो बीच में मन भटका तो दोबारा क्वेश्चन वन से शुरू करो और दोबारा साइकिल शुरू करो। और ये चार प्रश्न तीन साइकिल में करने हैं बिना मन भटकना। समझ में आए ना? चार प्रश्न, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं, मुझे क्या करना है, डायलॉग शुरू करना है, बीच में मन भटकेगा तो दोबारा क्वेश्चन वन से शुरू करो। ये एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाती है। मैं अपना अनुभव सुनाती हूं। मैं जब बाबा के कमरे में गई थी, एक घंटे का टाइम दिया था, तो मैं बैठ गई। 10 बजे दिन में तो कोई होता है नहीं उन दिनों में, तो मैं बैठ गई। तो मैंने शुरू किया अंदर से मन में, मैं कौन हूं। और फिर बीच में एक माता जी आ गई, सारा कमरा खाली, बैठी बिल्कुल मेरे और बाप के बीच में। फिर यहां से डायलॉग शुरू हुआ, मैं कौन हूं, अरे ये कौन है। होता है ना मन में, हम शुरू करते हैं गाड़ी लेकिन डायवर्जन होता है। फिर मैंने दोबारा शुरू किया, मैंने बोला होमवर्क है, दादी को तो रिजल्ट दिखाना होगा, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं। और फिर बाहर एक ट्रक का आवाज सुनाई दिया, हॉर्न बजा रहा था, अच्छा मैं कहां से आई, अरे ये क्या है। फिर मैंने अपने आप को टाइट किया, मैंने बोला अभी इससे गाड़ी नहीं चलेंगी, दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। तो मैंने दृढ़ता से बोला कि नहीं, ये मुझे ये होमवर्क पूरा ही करना है। और मैंने दोबारा गाड़ी शुरू की, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं, मुझे क्या करना है। और ऐसे बाबा ने बुद्धि की डोर ऐसे पकड़ ली और उपराम लेके गए, जैसे बिल्कुल अवस्था जैसे मैं इस दुनिया में हुई नहीं। 40 मिनट ऐसी अवस्था में बीते और ऐसे लगा 2 मिनट हुआ। तब से लेकर के ये जो विधि है, मुझे बहुत इस विधि से फायदा मिला है, खुद को एकाग्र रखने, खुद को फोकस में रखने के लिए। तो अभी हम योग का शुरुआत करते हैं 1 बजे तक इस विधि के आधार से, ठीक है। तो आप सभी सीधा बैठो, ऐसे वैसे टेढ़े वेढ़े नहीं बैठो, क्योंकि टेढ़े वेढ़े बैठने से नींद भी आती है। सीधा बैठो और मैं इन चार प्रश्नों का 3 या 4 बारी मैं साइकिल घुमाऊंगी, ठीक है। और अंदर से आप एकदम शांत चित अवस्था में बैठ जाओ और अंदर आत्मा से जवाब ले लो। ऐसे बुद्धि से जवाब नहीं, आत्मा की फीलिंग से जवाब ले लो और गुम हो जाओ, ठीक है। चलो, बिल्कुल शरीर को भी जाए, रिलैक्स हो जाए। और चलो एक अंदर की यात्रा शुरू करें। मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। मैं कहां से आई हूं।